टुडे मॉर्निंग आई वांटेड टू स्पीक ऑन द सब्जेक्ट ऑफ प्रेयर।
और आज मैं प्रार्थना के विषय में कुछ बांटना चाहता था।
सो दीज डेज आई वाज हैविंग अ बर्डन दैट आई शुड लर्न हाउ टू प्रे।
और इन दिनों में मेरे अंदर ये बोझ था कि मैं ये सीखूं कि हम प्रार्थना कैसे करें।
सो वी नो दैट पीपल ऑफ ऑल रिलीजियंस प्रे एंड वेदर दे आर बिलीवर्स और अनबिलीवर्स दे प्रे।
और हम जानते हैं कि सारे अलग अलग धर्म के लोग भी प्रार्थना करते हैं, भले वो विश्वास करे या ना करे, वो प्रार्थना जरूर करते हैं।
They pray for their family, they pray for food, clothing, shelter, they pray for a lot of their needs.
वो उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, वो उनके खाने के लिए प्रार्थना करते हैं, एक घर के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जरूरतों के लिए वो प्रार्थना करते हैं।
So when you see the prayer of all the unbelievers of the world, their prayer is always centered around their own self.
और अगर हम इस संसार के सारे अविश्वासियों के प्रार्थनाओं को देखें, तो उनकी प्रार्थना हमेशा उन्हीं के स्वयं के बारे में होती है।
So if my prayer is also like them, that is always all my prayers is always centered around me, my family and my needs, then I have not truly repented and been converted from my self life.
और अगर मेरी भी प्रार्थना ऐसे ही प्रकार से सिर्फ मेरे बारे में, मेरे परिवार के ही लिए केंद्रित है, तो फिर मैंने सचमुच अपना मन नहीं फिराया है।
We know that Jesus taught us to pray.
हम जानते हैं कि प्रभु ने, यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया।
We read in Matthew chapter 6 verse 9, we know the Lord's prayer, which says, "Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven."
हम जानते हैं मत्ती 6 उसके 9 वचन से आगे यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करने सिखाया, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए।
So here we see that Jesus wanted to say one thing, that his name be hallowed, his kingdom come, his will be done. That means first I want to be focused on what God's name, God's kingdom and God's will.
और यहाँ यीशु मसीह कहता है उसके प्रार्थना में कि प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो। इसका मतलब मेरी जो प्रार्थना की जो मेरा बोझ है, वो पहले परमेश्वर की इच्छा पूरी होना है।
Jesus wanted to shift the focus of my prayer from my own self to first towards the Father and His burden.
और यीशु मसीह चाहता था कि मेरे प्रार्थना का जो केंद्र है या जो मेरे प्रार्थना का जो ध्यान है, वो मुझसे हटकर परमेश्वर की ओर जाए और परमेश्वर की बोझ तरफ मैं ध्यान दूं।
We cannot produce that ourselves. We need to ask the Holy Spirit to teach us and to change our desire inside and change our life inside.
और ये जो चीज है वो हम अपने आप से अपने जीवन में उत्पन्न नहीं कर सकते। हमें पवित्र आत्मा से मांगना है कि पवित्र आत्मा हमारे मनों में ऐसी इच्छा को उत्पन्न करे।
And we as human beings are very very self-confident and self-satisfying, but we feel that we can do everything on our own.
और हम जो मानव लोग हैं, हम हमेशा, हमारा खुद पर बहुत भरोसा है और हम खुद ही से तृप्त हैं, हम सोचते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं।
God has to break our self-confidence and break our self-will before we can pray with real weakness.
पर परमेश्वर जो हमारी खुद की जो सामर्थ है, उसको उसको तोड़ना पड़ता है, जो हमारा खुद पर भरोसा है उसको तोड़ना पड़ता है, उसके बाद ही हम सचमुच प्रार्थना कर सकते हैं।
If I'm a very strong person, I don't need to pray.
मैं अगर बहुत ही एक सामर्थ्यशाली व्यक्ति हूँ तो मुझे प्रार्थना की जरूरत नहीं।
I can only I know that I can do everything. I am self-confident and I can do everything, so I don't need to pray.
फिर क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूं, मेरा खुद पर भरोसा है, फिर मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं।
Only when God crushes us and God breaks our self will, only then we can really pray.
पर जब परमेश्वर सचमुच हमें तोड़ता है और हमारे जो ये स्वयं इच्छा है उसको तोड़ता है, तभी हम प्रार्थना कर सकते हैं।
We know that the story of Jacob in the Old Testament, how he was and how he became.
हम पुराने नियम में याकूब की घटना जानते हैं कि वो कैसा था और फिर वो कैसा हो गया।
We read that he was a very crafty person and he knew how to survive in the world.
और हम जानते हैं कि वो बहुत ही एक चतुर व्यक्ति था और वो जानता था कि इस संसार में कैसे उस वो खुद जी सकता है।
That many people they say that he is a very smart person. He knows how to deal with people and all.
जैसे हम कुछ लोगों के बारे में कहते हैं, अरे वो तो व्यक्ति बड़ा चतुर है, बड़ा होशियार है, वो जानता है लोगों से कैसा बर्ताव रखे।
So I may be such a person which I know how to deal with people, I know how to talk, I know how to be manipulate people. I may be such a person.
और शायद मैं ऐसा व्यक्ति हो सकता हूँ जो इस संसार में कैसा जीना है जानता है, वो बातचीत कैसा करना है जानता है।
I know how to talk, pleasing others and get things from others. I know how to manipulate people and get things from people. I know everything.
और मैं जानता हूँ किस प्रकार से लोगों को बात करके खुश करके मैं उनसे कुछ हासिल कर सकता हूँ और लोगों से कैसे बात की जाती है, ये सब मैं जानता हूँ।
Such a person is not really broken by the Lord.
और ऐसा जो व्यक्ति है उसको सचमुच परमेश्वर ने आप अभी तक तोड़ा नहीं है।
So we know how he tricked this brother for a bowl of stew so that he could sell his birthright.
और हम जानते हैं कि कैसे उसने अपने ही भाई को फंसाया ताकि वो उसका जो पहलोटे का जो अधिकार है वो ले सके।
And then before his father, he also deceived his father in getting that birthright.
और इतना ही नहीं, उसने अपने खुद के पिता को भी फंसाया ताकि वो उस पहलोटे का अधिकार ले सके।
And then God had to take him through many years, many 20 years of breaking with his father-in-law before he could break him.
उतना ही नहीं, परमेश्वर को उसको 20 साल अपने ही ससुर के साथ रहकर उसको बहुत तोड़ना पड़ा और उसी के बाद वो उसको उसमें सफल हुआ।
We can read it later. It's in from Genesis chapter 31 verse 38 to 43.
और हम इसको बाद में पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति उसका 31 और पता, कैन यू रिपीट द रेफरेंस?
जेनेसिस चैप्टर 31 वर्स 38 टू 43।
उत्पत्ति उसका 31 अध्याय और 38 से लेकर 43 वचन तक।
So it says many things how he used to take care of the sheep night and day, whether sun or darkness or whether the wild animals attack the sheep, then also he has to get it back. And so many things he had to suffer, so many times his wages were changed. We read of all that things.
और वहाँ हम ऐसे कई सारी चीजों को पढ़ते हैं कि कैसे उसने कई साल तक उन भेड़ बकरियों को संभाला, रात में दिन में, कभी कभी उसको दूसरे लोग आकर अगर दूसरा कोई प्राणी फाड़ डालता था फिर भी उसके जो उसका जो वेतन था उसकी आय कई बार बदली गई।
And then we also read that he has to suffer the cold, he has to spend a lot of sleepless nights.
और हम ये भी देखते हैं कि वो बहुत ठंडी की दशा में बाहर होता था, उसकी रात में नींद नहीं होती थी।
So we read of all these breakings which God dealt in his life.
और हम देखते हैं कि ऐसे अलग अलग प्रकार से परमेश्वर ने उसको अलग थोड़ा थोड़ा करके तोड़ा।
But still he was not thoroughly broken.
पर उसके बावजूद वो पूरी तरीके से टूटा हुआ नहीं था।
And finally when he wants to meet Esau, he was really scared.
और आखिरी में जब उसको फिर एक बार एसाव से मिलने की पारी आई तब वो बहुत ही डर गया था।
And we see of a man who was wrestling with him at night.
और फिर हम देखते हैं कि एक पुरुष उसके साथ रात में मल युद्ध करता है।
And it was actually the Lord himself who appeared to him and he was wrestling with him.
और ये तो स्वयं प्रभु ही था जो आकर उसके साथ मल युद्ध कर रहा था।
And still he could he was not broken.
और अभी भी याकूब टूटा हुआ व्यक्ति नहीं था।
Finally, God touched his hip bone and his hip bone was dislocated.
और आखिरी में प्रभु ने उसके जांघ की नस को छुआ और उसकी जांघ की नस चढ़ गई।
So that is where he could not walk and he suffered the real pain.
और फिर ऐसा हुआ कि वो चल ही नहीं सक रहा था और उसमें उसने सचमुच पीड़ा को महसूस किया।
And now the Lord says, now let me go. Because it's daybreaking.
और फिर परमेश्वर कहता है मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाली है।
And then Jacob says, I will not let you go unless you bless me.
और फिर याकूब कहता है जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा।
That is the type of brokenness. That is the prayer of brokenness which came out of the Jacob's life, which God was longing for all these years.
और ये एक बहुत ही टूटे हुए मन से प्रार्थना की थी जो परमेश्वर बहुत सालों से चाहता था याकूब से।
And that is when God says that now onwards you will, what is your name? And he says, I am Jacob. And God says, you will no longer be Jacob. I will change your name to Israel.
और इसके बाद ही परमेश्वर उसको पूछता है तेरा नाम क्या है और वो कहता है याकूब और वो कहता है तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इसराइल होगा।
So we understand that when we come to a point of weakness, only then we can pray effectively.
और हम यहाँ देखते हैं कि जब हम बहुत ही निर्बल हो जाते हैं उस निर्बलता के परिस्थिति से ही हम अच्छी और प्रभावशाली प्रार्थना कर सकते हैं।
We read in Romans 8:26 that in the same way the Spirit also helps our weaknesses, for we do not.
और हम रोमियो 8:26 में पढ़ते हैं कि इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है।
For we do not know how to pray as we should, but the Spirit Himself intercedes for us with groanings too deep for words.
क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है।
The first thing we see here is Spirit helps us in our weaknesses.
और यहाँ पहली चीज जो हम देखते हैं कि आत्मा हमारी अपने दुर्बलता में सहायता करता है।
Many times we are not weak.
कई बार हम दुर्बल नहीं होते।
We are not come to a place where I say, Oh God, I cannot do it.
हम ऐसे जगह या ऐसे परिस्थिति में आए नहीं है जहां हम कह सके कि प्रभु मैं नहीं कर सकता।
And that cry from our heart is not there.
और वो हमारे अंदर से जो एक आने वाली जो एक आह है या एक प्रार्थना है वो नहीं होती।
And that is why it says we have to become weak before the Holy Spirit can help us.
और इसलिए यहाँ लिखा है कि पहले हमें दुर्बल होना जरूरी है, उसके बाद पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है।
It says we do not know how to pray.
और फिर यहाँ लिखा है क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से की जाए।
So we may think that I have been a Christian for so many years. From the time I was a child, my father and mother taught me to pray.
और फिर शायद हम सोचेंगे मैं तो इतने सालों से एक मसीही हूँ, मेरे बचपन से मेरे माता पिता ने मुझे प्रार्थना करना सिखाया।
Actually, how God wants us to pray, I have not learned it.
पर सच बात तो ये है कि जैसा परमेश्वर चाहता है मैं प्रार्थना करूं, वैसा तो मैं प्रार्थना करना सीखा ही नहीं।
I have not learned how to pray and I have not learned the correct subjects to pray for.
मैं कैसे सही प्रार्थना क्या होती है वो भी नहीं सीखा और सही विषय क्या है जिनके बारे में प्रार्थना की जाए मैं वो भी नहीं जानता।
I don't know what to pray for.
मैं ये नहीं जानता कि किस विषय के लिए मैं प्रार्थना करूं।
And that is why the Holy Spirit Himself intercedes for us. That means the Holy Spirit helps me so that I can intercede in the correct way.
और इसलिए लिखा है परंतु पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती करता है और वो हमें सिखाता है कि कैसे हम विनती या मध्यस्थी कर सके।
That means the Holy Spirit should come in my heart and help me to understand God's mind.
इसका मतलब पवित्र आत्मा मेरे मन में आना चाहिए और वो मुझे मदद करेगा कि मैं परमेश्वर के मन को समझ पाऊं।
I should not just pray my mind, but I should understand what God's mind is.
मेरे मन के हिसाब से मुझे प्रार्थना नहीं करनी है, मुझे ये समझना है, ये परखना है कि प्रभु का मन क्या है।
That is why it says in verse 27 of Romans 8 that he who searches the heart knows what the mind of the Spirit is. Because he intercedes for the saints according to the will of God.
और उसी वजह से रोमियो 8:27 में लिखा है और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है।
Jesus wanted to teach Peter the lesson about this weakness.
और यीशु मसीह भी पत्रस को इस निर्बलता के विषय में सिखाना चाहता था।
Peter was actually a very strong person.
पत्रस जो था वो बहुत ही एक सामर्थ्यवान या बलवान व्यक्ति था।
He was so strong that when Jesus said that all of you will deny me, he said even if everybody denies you, I will never deny you.
और वो इतना सामर्थ्यवान था कि जब यीशु मसीह ने कहा कि आज रात तुम सब मेरा इनकार करोगे, तब उसने कहा प्रभु अगर सब लोग भी तेरा इनकार करे तो मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा।
But we read in Matthew chapter 26 verse 41.
पर हम मत्ती उसके 26 और उसके 41 वचन में पढ़ते हैं।
That before Jesus was going to the cross, he encouraged his disciples to pray with him.
यीशु मसीह उसके क्रूस को जाने के पहले वो उसके शिष्यों को प्रोत्साहन दे रहा है कि वो उसके साथ प्रार्थना करे।
He said, keep watching and praying that you may not enter into temptation.
और वो कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो.
And he says the spirit is willing, but the flesh is weak.
और फिर वो कहता है आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है.
So he was trying to tell his disciples that their flesh is very weak and they cannot stand in temptation.
और वो उसके शिष्यों को यही बताना चाहता था कि हमारा जो शरीर या हमारे ये जो देह है वो बहुत ही निर्बल है और वो परीक्षा के समय खड़ी नहीं हो सकती.
That is why I have to earnestly pray.
और इसलिए मुझे पूरे मन से प्रार्थना करनी है.
And so that God will give me the help.
ताकि परमेश्वर मेरी सहायता करे.
Disciples were quite strong and confident and they just slept.
पर जो शिष्य थे वो बहुत ही सामर्थ्य से भरे हुए थे और उनको खुद पर भरोसा था इसलिए वे सो गए.
But Jesus, who had never sinned in his life and he did not have a sinful nature, he prayed very earnestly that God will save him.
पर यीशु मसीह जिसने उसके जीवन में कभी पाप नहीं किया था और ना ही उसके जीवन में पाप का स्वभाव था, उसने बहुत ही मन से और बहुत यत्न से प्रार्थना की प्रभु को कि वो उसको बचाए.
So we read in Hebrews chapter 5 verse 7.
और इसलिए हम इब्रानियों उसके पांचवे अध्याय के सातवें वचन में भी पढ़ते हैं.
That in the days, it says about Jesus, in the days of his flesh, he offered up both prayer and supplications with loud crying and tears and to him who was able to save him from death, and he was heard because of his piety.
इब्रानियों 5:7 में लिखा है, यीशु जब पृथ्वी पर था उस समय के बारे में, यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई.
This is one of the secrets of the life of Jesus.
और यीशु मसीह के जीवन का ये भी एक रहस्य है.
So he, in the days of his flesh, means every day of his life, he used to pray with loud crying and tears.
उसके देह के रहने के दिनों का अर्थ है उसके जीवन के हर दिन वो बहुत ही ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करता था.
Because Jesus understood the weakness of his flesh.
क्योंकि यीशु मसीह उसके खुद के देह के निर्बलता को समझ सकता था.
That is why he had this cry in his heart towards God.
और इसलिए उसके हृदय में ये एक रोना था परमेश्वर के प्रति.
And it says that he was heard because of his godly fear.
और आगे लिखा है कि उसके भक्ति के कारण उसकी सुनी गई.
And he was praying so that God will save him from death.
और वो इसलिए प्रार्थना कर रहा था ताकि वो अपने मृत्यु से परमेश्वर उसको बचाए.
So that death, we know that it is not the physical death because God did not save him from his physical death.
और हम ये जानते हैं कि ये जो मृत्यु है ये उसकी शारीरिक मृत्यु नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने उसको उसके शारीरिक मृत्यु से नहीं बचाया.
Jesus was praying with all earnestness that God will save him from being losing the connection with the Father that will bring spiritual death.
और यीशु मसीह अपने पूरे मन से इसलिए प्रार्थना कर रहा था ताकि वो आत्मिक मृत्यु से बच जाए ताकि उसका और परमेश्वर का जो संपर्क या संबंध है वो ना टूटे.
I need to also develop this habit of continuously crying to God in my heart so that God will save me from sin.
और मुझे भी इसी कारणवश अपने जीवन में भी ये आदत लगानी है कि मैं हर समय प्रभु को प्रार्थना कर रहा हूँ कि वो मुझे पाप से बचाए.
That is how we can get into a life where we can taste the victory of God.
और इसी प्रकार हम एक ऐसे जीवन में प्रवेश कर पाएंगे जहां हम परमेश्वर के विजय को उसका आनंद ले पाएंगे.
We also know that in the last days it is much more essential for us to learn how to pray.
और हम ये भी जानते हैं कि जो अंतिम दिन है उनमें और भी ज्यादा जरूरी है कि हम इस बात को सीखें कि प्रार्थना कैसे करते हैं.
We know that when Jesus was hanging on the cross, we read in Luke chapter 23 verse 28.
हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह उस क्रूस पर था और लूका उसके 23 और उसके 28 वचन में.
Before he was hanging on the cross, before he was while he was going on the way, there were some who were weeping.
और उस क्रूस पे जाने के पहले जब वो उस क्रूस के मार्ग में था तो उसके पीछे कुछ स्त्रियां विलाप कर रही थी.
And Jesus says to those women in Luke chapter 23 verse 28, daughters of Jerusalem, stop weeping for me, but weep for yourself and for your children.
और उन विलाप करने वाले स्त्रियों को यीशु मसीह कहता है लूका उसके 23 और 28 में, यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो.
If you read the down portion, what Jesus was referring to, it is about the last days.
और उसके बाद के जो वचन है अगर आप पढ़ेंगे तो आप हम देखते हैं कि वो अंतिम दिनों के बारे में है.
It is about us and our children, that I need to have a heart to cry for my children and myself.
और ये हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए है और इसलिए मेरे पास ऐसा दिल होना चाहिए कि मैं मेरे लिए और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ.
Because we have come into a very evil world, which is very difficult for us to survive.
क्योंकि हम बहुत ही एक बुराई के भरे हुए दुनिया में है जहाँ जीना बहुत मुश्किल है. और इसलिए हमें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है कि ताकि परमेश्वर उन्हें इस भ्रष्ट संसार से बचाए.
God will ensure that they are born again and they are filled with the Holy Spirit and they are disciples of Jesus.
और परमेश्वर इस बात का सुनिश्चित करे कि वो नया जन्म पाए, वो पवित्र आत्मा से भरे और वो यीशु मसीह के शिष्य बन जाए.
So we need to pray with all earnestness about these things.
और इसलिए हमें अपने बहुत ही पूरे मन से प्रार्थना इन सारी चीजों के लिए करनी है.
Last week we heard from Brother Ian from Zechariah chapter 12 verse 10.
और पिछले सप्ताह हमने भाई ईयन से जकरिया उसके 12वें अध्याय के 10वें वचन से सुना.
I will pour out on the house of David and on the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and of supplication, so that they will look on me whom they have pierced, and they will mourn for him as one mourns for his only son, and they will weep bitterly over him like bitter weeping over a firstborn.
और वहां लिखा है कि मैं दाऊद, जकरिया उसका 12 और 10, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौटे के लिए करते थे. और यहाँ लिखा है कि अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना का आत्मा, और इसलिए हम जानते हैं कि ये इन दिनों के लिए, नई वाचा के दिनों के लिए है.
And in Hindi, the translation is very good when it says the prarthna sikhane wala, the one spirit which teaches us how to pray.
और हिंदी में तो इसका भाषांतर है कि प्रार्थना का नहीं पर प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा, जिसका मतलब पवित्र आत्मा प्रार्थना सिखाता है.
So we need to learn how to pray.
और इसलिए हमें ये इस बात को सीखना है कि हम प्रार्थना कैसे करें.
And as we heard, they will look on me whom they have pierced.
और वहाँ लिखा है कि वो मुझे देखेंगे जिन्होंने, जिसको उन्होंने बेधा है.
So here it says that I will look on Jesus whom I have pierced.
और यहाँ ये लिखा है कि मैं अपनी दृष्टि यीशु मसीह की ओर करता हूँ जिसको मैंने बेधा है.
Have I looked at Jesus whom I have pierced?
तो क्या मैंने उस यीशु मसीह को देखा है जिसको मैंने खुद ने बेधा है?
What has pierced Jesus? It is my sin that has pierced Jesus.
यीशु मसीह क्यों, यीशु मसीह को किस चीज ने बेधा? मेरे पाप ने उसको बेधा.
So what I am mourning for is not just that Jesus was pierced, but it is my sin that I am mourning for which has pierced Jesus.
और इसलिए मैं इसलिए विलाप नहीं करता कि यीशु मसीह को बेधा गया, पर मैं इसलिए विलाप करता हूँ कि वो मेरा पाप था जिसके वजह से यीशु मसीह बेधा गया.
That is why I have a cry in my heart so that God will save me from my sin.
और इसलिए मेरे हृदय में ये एक पुकार है, ये एक रोना है कि प्रभु तू मुझे मेरे पापों से बचा.
There are two types of crying. One is the past sin which I have committed, and one is the sin which is still there, which I want to be delivered from.
और दो प्रकार की ये पुकार या एक ये विलाप है. एक तो जो पाप भूतकाल में मैं कर चुका हूँ, और दूसरा एक पाप जो अभी जिससे मुझे छुटकारा चाहिए.
So we have a continuous cry in our hearts, oh Lord, save me.
और इसलिए एक हर समय हमारे हृदय में एक पुकार होती है कि प्रभु तू मुझे बचा.
Sometimes when I see something which springing up which was inside me, some unloving attitude, something which comes up, I immediately have a cry in my heart, oh Lord, save me.
और कई बार ऐसा होता है कि कुछ कोई एक परिस्थिति में मैं देखता हूँ कि कुछ ऐसा मेरे मन से बाहर आता है, शायद एक प्रेम नहीं करने वाला स्वभाव, और तुरंत मेरे अंदर से एक पुकार आती है कि प्रभु तू मुझे बचा.
So that is how we live every day, praying to God.
और इसी प्रकार हम हर दिन जीवन जीते हैं परमेश्वर के प्रति प्रार्थना करते हुए.
That's how we understand in 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 it says, प्रे विदाउट सीसिंग
और यही तो तिसलनकियो उसका पहला उसकी पहला तिसलनकियो उसका पांचवा अध्याय और 17 वचन में लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो
व्हाट इट मींस इज कंटीन्यूअसली आई हैव अ हार्ट ऑफ डिपेंडिंग ऑन गॉड एंड द स्पिरिट ऑफ प्रेयर
इसका मतलब है कि हर समय निरंतर मेरे पास एक ऐसा हृदय है जो परमेश्वर पर आधार आधार लेने की कोशिश करता है प्रार्थना में
इन लेट्स रीड फ्रॉम जूड 120
और हम पढ़ेंगे यहूदा की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 20 वचन
बट यू बिलवड बिल्डिंग योरसेल्फ अप ऑन योर मोस्ट होली स्पिरिट फेथ प्रेइंग इन द होली स्पिरिट
और वहां लिखा है पर हे प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए
प्रेइंग इन द होली स्पिरिट
सॉरी ब्रदर
प्रेइंग इन द होली स्पिरिट
पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना
And just praying according to how God wants me to pray.
इसका मतलब उस प्रकार प्रार्थना करना जैसा परमेश्वर चाहता है मैं प्रार्थना करूं।
In Ephesians 6, we know that it talks about the spiritual warfare and the armor which we need to wear.
और हम जानते हैं इफिसियों के छठे अध्याय में जो आत्मिक युद्ध है और जो शस्त्र हमें धारण करने हैं उसके बारे में बताया गया है।
At the end of the passage, we read in chapter 18 and 19, it says, verse 18 and 19, it says, with all prayer and petition, pray at all times in the Spirit.
और उसी शास्त्र भाग के अंत में, इफिसियों 6, 18 और 19 में लिखा है कि हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करो.
So, we need to ask God to have pray in the Spirit, a habit of listening to God, a habit of understanding His burden and asking God to teach us to pray.
और हमें इस बात को सीखना है कि हम हर समय आत्मा में प्रार्थना करें, परमेश्वर के मन को समझें और परमेश्वर के बोझ को समझकर प्रार्थना करें।
In Ephesians we know there is a verse which says that make most of your time because the days are evil.
और हम जानते हैं कि इफिसियों में एक वचन है जहाँ लिखा है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं।
So we need to understand the time we are living in.
और इसलिए हमको इस बात को समझना है कि हम कैसे काल में जी रहे हैं।
We read in Second Timothy chapter 3, verse it talks about the last days.
हम दूसरे तिमोथियस उसके तीसरे अध्याय में अंतिम दिनों के बारे में पढ़ते हैं।
I just want to tell about the two characteristics of the last days.
और अंतिम दिनों के जो दो चिन्ह हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ।
It is talking about Christians in the last days.
और ये मसीहों के बारे में बात कर रहा है जो अंतिम दिनों में जिएंगे।
One is lovers of pleasure rather than lovers of God.
एक तो है कि वो अपने ही सुख विलास से पर प्रेम करते हैं, परमेश्वर पर प्रेम नहीं करते।
I love a comfortable life.
जिसका मतलब है मैं बहुत ही एक सुख और आराम के जीवन पर प्रेम करता हूँ।
I love good food, good sleep, entertainment. I need to watch movies and Facebook and everything. I need to have a good life.
मुझे अच्छी मेरे पास अच्छा खाना होना चाहिए, अच्छी नींद होनी चाहिए, मुझे मनोरंजन पसंद है, मुझे मूवीज देखने हैं, फेसबुक देखने हैं, एक अच्छा जीवन जीना है।
And that is my God.
और यही एक अच्छा जीवन ही मेरा परमेश्वर है।
Rather than love, because they say lovers of pleasure rather than lovers of God.
क्योंकि यहाँ लिखा है परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे।
Waste all my time doing this entertaining stuff and I don't have any time to seek after God.
और इसका मतलब मैं अपना सारा समय इसी सुख विलास के पीछे या मनोरंजन के पीछे दबाता हूँ और परमेश्वर के बारे में मेरे लिए समय नहीं है।
And then it says holding to a form of godliness, although they have denied its power.
और वहाँ पांचवें वचन में लिखा है वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे।
Even though I am entertainment is my God, I have some time for prayer. Like in the morning, I have some prayer time and some Bible reading, which I satisfy myself that I have done what I need to do.
और इसका मतलब भले ही मनोरंजन उनका मेरा परमेश्वर है, पर उसके बावजूद मैं थोड़ा बहुत समय प्रार्थना के लिए रखता हूँ। जैसे मैं सुबह थोड़ी प्रार्थना करके खुद को मैं संतुष्ट करता हूँ कि मुझे जो करना था वो मैंने किया है।
I have a form of godliness to satisfy myself.
और फिर मेरे पास एक भक्ति का भेष है जिससे मैं खुद को तृप्त करता हूँ।
I don't really belong to God.
मैं सचमुच पूरी तरीके से परमेश्वर का नहीं हूँ।
My time does not belong to God.
मेरा समय परमेश्वर का नहीं है।
My time belongs to myself and my pleasure.
मेरा जो समय है वो मेरे लिए है और मेरे सुख विलास के लिए है।
So this is something which I need to repent from and need to turn towards God and ask him to help me to turn completely towards him.
और ये ऐसी चीज है जिसके बारे में मुझे मन फिराना है, परमेश्वर की ओर फिरना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि वो मेरी सहायता करे ताकि मैं उसकी तरफ मुड़ सकूं।
And like it says in Ephesians chapter 5 verse 15.
और जैसे इफिसियों उसके 5:15 में लिखा है,
sorry for verse 14, it says for this reason it says awake sleeper and arise from the dead and Christ will shine on you.
और इफिसियों 5:14 इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी।
So let us wake up and ask God to fill us with the Holy Spirit, give our lives to him and ask him to fill us.
और आइए हम जाग जाएं, हम वापस उठे और परमेश्वर से मांगे कि वो हमें पवित्र आत्मा से भरे।
And nothing, none of these things are to condemn ourselves, but to ask God to help us.
और ये सारी जो चीज है ये किसी पर दोष लगाने के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए है ताकि हम परमेश्वर को मांगे कि वो हमारी सहायता करे।
आमीन।
आमीन।
मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए। वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ, यशाया उसके 30 अध्याय, यशाया उसका 30:15। और ये वचन ने पिछले सप्ताह में मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया और चुनौती दिया है। यहाँ पे कहता है यशाया उसका 30:15, वहाँ लिखा है कि प्रभु यहोवा इसराइल का पवित्र यह कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया है। और ये वचन ने सच में हमने बहुत बार इसको पढ़ा होगा, लेकिन एक बहुत ही एक प्रोत्साहन और एक बहुत ताजगी के साथ मेरे जीवन में आया कि खास करके इस शब्द की, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। और ये शांत रहना विचारों में, हमारे कार्यों के अंदर, जब हम परमेश्वर पर कहते कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, बहुत आसान होता है मेरे लिए भरोसा करना, प्रभु के ऊपर कहना प्रार्थना में या अलग अलग परिस्थितियों में कि सब कुछ जब अच्छा है, सारी परिस्थितियां बहुत ही सकारात्मक चल रही है, परिस्थितियां अच्छी है जॉब में, हर जगह पर, ये कहना बहुत ही आसान हो जाता है कि मैं परमेश्वर पर भरोसा रखता हूँ और परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है। लेकिन ये बहुत कठिन उतना ही हो जाता है इस बात को दिखाना कि जब हालातें सही नहीं होती है, हलचल हो जाती है परिस्थितियों में, जैसे हम चाहते हैं चीजें नहीं बदल रही है या दबाव है या जैसा हमने चाहा था वैसा चीजें नहीं बढ़ रही है आगे, या चीजें गिरती हुई नजर आती जिसको हम संभालने की कोशिश कर रहे हैं। और उन हालातों के अंदर मैंने देखा कि प्रभु ये वचन मेरे जीवन में कितना अधिक इसको पूरा होना जरूरी है, जहां कहता है कि प्रभु शांत रहना और भरोसा रखना। और प्रभु यही इन दिनों के अंदर सिखा रहा है कि किरण भीतर से वो अपने आप को शांत रहना बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें हम प्रार्थना में करते हैं लेकिन फिर भी मन प्रभु के अंदर शांत होना, वो दृढ़ता के साथ जड़ पकड़ते हुए परमेश्वर में शांति रखना बहुत जरूरी। और एक वचन में जो पिछले सप्ताह में मुझे प्रोत्साहित किया वो है रोमियो उसका 15:13, रोमियो की पत्री उसका 15:13, जहां लिखा है, माफ करना, रोमियो, हाँ रोमियो का 15:13 लिखा है कि परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें भरोसा करने में सब प्रकार के आनंद और शांति में परिपूर्ण करे। यहाँ पे दो चीजें लिखी कि आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, लेकिन एक अनुवाद में मैंने पढ़ा कि जो परमेश्वर जो सारे आशा का दाता है वो हमें विश्वास या भरोसा करने के द्वारा आनंद और शांति से हमें भरपूर करे। इसका मतलब कि मैं अपने जीवन के अंदर वो आनंद और शांति को निरंतर यदि मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूं तो सबसे पहला मुझे एक कंप्लीट भरोसा रखना, मुझे इन दिनों के अंदर मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रभु मैं कैसे तुझ पर संपूर्ण रीति से भरोसा रखना है। बहुत बार होता है कि मैं अपने आप पर भरोसा रखने की कोशिश करता हूँ, अपने स्रोत जो है उसके ऊपर अपनी आशा भरी नजरें लगाने की कोशिश करता हूँ कि वो मेरी मुझे संपूर्णता देंगे। लेकिन हम इस वचन को जानते हैं कि संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रख, अपने समझ का सहारा ना ले, इसको हम जानते हैं। लेकिन प्रतिदिन इसको जीने के लिए हमें प्रतिदिन पवित्र आत्मा से उस अनुग्रह की जरूरत है कि प्रतिदिन प्रभु जिन उपलब्धियों को मैंने प्राप्त कर लिया है, जिन चीजों को मैं करना जानता हूं अपने अनुभव से, अपने सामर्थ्य से, प्रभु मेरी मदद करके उन बातों के अंदर भी प्रभु मैं पूरी तरह से तुझ पर निर्भर होना जानूं। और हो सकता है कि कई क्षेत्र के अंदर मैंने विजय प्राप्त कर ली होगी, उसकी ओर देखते हुए नहीं, लेकिन परमेश्वर की नम्रता की ओर देखते हुए कि परमेश्वर सच में कितना महान है जिसने हमको बुलाया है, उसकी नम्रता, वो जैसे पिता पर भरोसा रखता है। मैं चाहता हूं कि प्रभु मेरे जीवन में यीशु जैसे तू पिता पर भरोसा रखता था प्रतिदिन, जैसे हमने प्रार्थना के बारे में भी सुना कि एक एक, एक हमारे अंदर वो कठोरता होती जिसको तोड़े जाना बहुत ही जरूरी है। जैसे हम पतरस के बारे में देखते हैं कि जब तक वो यीशु मसीह की ओर ताक रहा था तब तक वो चल पाया, और जब वो परिस्थितियों की ओर ताक रहा था, और यही हालत हम सभी की उन हालातों में होती है, जब हम चाहते तो है कि हम प्रभु पर भरोसा रखें पूरे मन से, पर परिस्थितियों की ओर जब हमारी नजर जाती है तब हम कहीं ना कहीं डूबने लगते, वो भरोसा नहीं दिखता है। और खास करके उन कठिन हालातों में जहां से हम होकर गुजरते हैं, कई बार होता है कि हमें बहुत एक लंबे समय तक राह देखनी पड़ती है, परिस्थितियां नहीं बदलती है, लोग नहीं बदलते हैं, परिस्थिति वैसी ही रहती है। लेकिन मैं यूसुफ के जीवन से भी बहुत ही प्रोत्साहित हुआ। यूसुफ के जीवन में उत्पत्ति उसके 40 अध्याय में इसके बारे में पढ़ते हैं। उत्पत्ति उसका 40 अध्याय उसका वचन 23, Genesis 40:23। और यहाँ पे बहुत ही प्रोत्साहन देने वाला ये वचन मुझे लगा कि 23 वचन में लिखा है कि फिर भी पिलाने हारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा परंतु उसे भूल गए। यहाँ पे हम जानते हैं इस कहानी को, पकाने हार और पिलाने हार का स्वप्न का अर्थ बताता है। एक आशा शायद मैं यूसुफ के पास होता, यूसुफ के जीवन उसकी जगह पर होता तो मेरी भी एक आशा लग जाती, एक भरोसा मनुष्य के ऊपर कि वो मुझे यहाँ से बाहर निकालेंगे। उसको कोई आशा नहीं थी कि मुझे यहाँ से कैसे कौन बाहर निकालेगा। हम देखते कि ये लोग उसको भूल गए, उसको स्मरण न रखा। और 41 वचन के पहले वचन में पूरे 2 वर्ष बीतने पर, मतलब एक वचन से दूसरे वचन में आते उसके भीतर 2 साल का समय है। और मैं यहाँ पे देखता हूँ इस 2 साल में यूसुफ कैसे प्रभु पर भरोसा किया होगा। एक आशा थी वो भी मिट गई कि उसको कोई बाहर निकालने की एक आशा थी, अब कोई आशा नहीं है, कुछ भी दिख नहीं रहा होगा। एक ऐसे डर से, भय से, कई बार ऐसी चिंताएं आती होंगी, लेकिन हर चीज में कहीं पर भी उसने कोई कंप्लेन, कोई शिकायत नहीं किया। और पूरे 2 वर्ष बीतने तक, मैं जानता हूं यहाँ पे शायद लिखा नहीं है, लेकिन पूरी तरह से उसका मन परमेश्वर पर भरोसा रखे हुए स्थिर होगा, पूरी तरह से वो परमेश्वर में शांत होगा। प्रभु यदि लोग मुझे भूल गए, मेरी भलाई को भूल गए, प्रभु यहाँ तो कोई मुझे याद नहीं कर रहा है, सब कुछ अंधकार में दिख रहा है, कैसे मैं इस बंदीगृह से बाहर निकलूंगा, प्रभु मैं नहीं जानता कौन निकालेगा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि इस 2 वर्ष के समय में वो पूरी तरह से परमेश्वर में शांत होगा। और इस वचन ने मुझे प्रोत्साहित किया कि वो शांति उसके मन के अंदर होगी, वो जैसे हमने यशायाह 30 अध्याय में कि शांत रहने में और भरोसा रखने में हमारी वीरता, हमारा बल मसीह जीवन का उसमें कि हम अपने आप को अंदर से भीतर से शांत बनाए रखें। और एक वचन को, एक वचन के भाग को मैं पढ़ना चाहता हूं जो है पहला माफ करना दूसरा राजा उसका 18 वचन। इस राजा के बारे में हम पढ़ते हैं, दूसरा राजा उसका 18 अध्याय उसके कुछ वचन, शुरुआती वचनों को पढ़ना चाहता हूँ। 2 Kings 18, यहाँ पे हिजकिया राजा के बारे में हम पढ़ते हैं। इस कहानी को भी शायद हमने पढ़ा होगा, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा तो एक चीज बार बार इसमें से उभर आ रही थी और मेरे मन को बहुत ही उसने प्रोत्साहित किया। इस 18 वचन में 19 अध्याय में भरोसा शब्द जो है वो बार बार, बहुत बार इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे देखते एक बहुत ही बड़ी समस्या से गुजर रहा है, शत्रु ने उसको आ घेरा है, लेकिन वहां हम देखते हैं कि इस राजा का परिचय जो है वो कैसे दिया जाता है। ये हिजकिया राजा का वचन 5 के अंदर उसका परिचय है, दूसरा राजा 18 अध्याय वचन 5। हिजकिया राजा जो था वो इसराइल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था, और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर न हुआ और न उससे पहले भी ऐसा कोई हुआ था। और ये राजा के बारे में हम पढ़ते उसके 3 और 4 वचन में हम देखते हैं कि उसने कैसे ऊंचे ऊंचे स्थानों को गिरा दिया, उन लाठों को तोड़ दिया, अशेर जो मूर्ति पूजा वहां पर थी उनको काट दिया, मिटा दिया, पीतल का सांप जो मूसा ने बनाया था उसको भी उसने मिटा दिया, उसने पूरी तरह से चकनाचूर, उसने वहां पर पर्व जो नहीं मनाते थे इसराइल के अंदर, जो उसको उसने बहुत अच्छे अच्छे कामों को किया, लेकिन उसकी शुरुआत जो है उसका परिचय मुझे बड़ा प्रोत्साहित करने वाला कि जो यहोवा पर भरोसा रखता था। अय्यूब के बारे में देखते हैं कि प्रभु यदि तू मुझे इस परिस्थिति में मार भी दे प्रभु, प्रभु फिर भी मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। क्या हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए ये परिचय दिया जा सकता है? मैं सोच रहा था कि किरण या हमारे खुद के नाम डाल पर इस राजा के आगे कि वो परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला था। कितना आसान है कि शायद यहाँ पर लिखा जा सकता था बड़े बड़े काम करने वाला है, लेकिन उसकी उसके जीवन की जो परिचय है वो व्याख्या जो है उस भरोसा। और मैं यही जीवन से चाहता हूँ कि प्रभु मेरे जीवन में, प्रभु जी मैं तुझ पर और अधिक भरोसा रखना चाहता हूँ। इस राजा की जीवन में हम आगे पढ़ते हैं कि 19 वचन 20 वचन में हम उसको देखेंगे नहीं, लेकिन आप समय मिलने पर इस कहानी को आप ध्यान लगा कर सुने, इसको पढ़ना कि कैसे एक भरोसा रखने से कैसे उसने विजय को प्राप्त की, कैसे उसका मन प्रभु पर भरोसा रखिए था। वचन 19, 20, 21 के अंदर उसके आगे के वचनों में 19 अध्याय में कैसे वो परमेश्वर पर भरोसा रखकर परमेश्वर पर वो बड़े बड़े कामों को उसने देखा प्रभु के। और इस चीज ने मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया। इस एक पिक्चर में आपको जो दिखाना चाहता हूँ, एक जब यीशु मसीह के संदर्भ में जब हम देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह उन हालातों के अंदर कैसे शांत रहा होगा, और ये चित्र जो है वो हमारे जीवन को चुनौती देने वाला एक चित्र है, जहां पर हम देख सकते हैं कि कई बार उन हालातों से हम गुजरते हैं और जहां पर हमें हमारे पास शब्द नहीं होते, हमारे विचार कार्य नहीं करते। मैंने देखा है कई बार होता है कि प्रभु हम भरोसा शब्दों में रखते हैं, लेकिन सच में हमारा मन बहुत ही चिंताओं से, भय से, व्याकुलताओं से भरा हुआ था कि कैसे प्रभु जी इसमें से हम बाहर निकले, प्रभु कैसे होगा। और एक वचन मुझे याद आता है कि भजन संहिता उसके 62 अध्याय में लिखा है, भजन संहिता उसका 62 अध्याय उसका वचन 8 कहता है, हे लोगो हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। ये वचन बहुत उत्तम, जैसे कि हमने प्रार्थना के बारे में सुना, हर समय प्रार्थना करने के संबंध में, और यहाँ पे उसी संबंध में लिखा है कि हे लोगो हर समय उस पर भरोसा रखो। जब परिस्थिति उत्तम है, परिस्थिति बदतर है, लेकिन यहाँ पर प्रोत्साहित हमें किया जाता है कि हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखना है, चाहे वो तूफान भरे हालातों में। कैसे यीशु यहाँ पर उन हालातों में परमेश्वर पर पूरी तरह से बैठे हुए हैं। जब मैं सोच रहा था कि प्रभु मेरे जीवन के अंदर ये जो भरोसा जो है किस तरह से कार्य करना चाहिए प्रभु, कि मैं पूरी तरह से तुझ में शांत रहूं प्रभु जी, मेरा मन प्रभु किसी भी बात से विचलित न हो। यदि मैं देखता हूं तूफान है, लोग मेरे विरोध में है, काम की जगह पर चीजें सही नहीं है, लोग अलग अलग प्रकार से मुझे सताने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभु तब भी मेरा मन पूरी तरह से तुझ में शांत रहे, तेरा आनंद, तेरी शांति ये परिस्थितियां ये लोग मुझसे चुरा न पाए। उस भरोसे को मैं परमेश्वर पर बनू। खास करके देखते हैं जैसे यूसुफ के जीवन में देखा कि जब हमारे जीवन के अंदर एक 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 देरी को हम देखते हैं, कि एक डीले को हम देखते हैं, कई बार होता है कि शुरुआती समय में हमारे पास विश्वास होता है, लेकिन हम अब्राहम के जीवन को देखें कैसे उसने प्रति वर्ष कैसे उस विश्वास उस भरोसे के ऊपर, जब परिस्थितियां वैसे ही थी, कोई संतान नहीं था, यूसुफ की परिस्थितियां नहीं बदल रही थी, पर उसने परमेश्वर पर भरोसे को बनाए रखा, परमेश्वर के प्रेम में, उसकी योजनाओं में हम जड़ पकड़ते हुए कि प्रभु तेरी योजना है मेरे जीवन के लिए, उसे कोई भी उसको खारिज नहीं कर सकता, उस योजना को जरूर तू पूरा करेगा। मैं अपने आपके जीवन को किसी के साथ तुलना नहीं करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं प्रभु मेरे जीवन के लिए जो भी तेरी योजना है प्रभु, उन योजनाओं को प्रभु तू पूरा कर, और उस पर भरोसा रखने के लिए मेरी मदद कर, प्रभु पर केवल भरोसा। मुझे वो संतोष पूरन का जो एग्जाम्पल जो मुझे बहुत ही प्रोत्साहित और चुनौती देता है कि एक अंधा व्यक्ति कैसे रोज सुबह उठकर उसकी छड़ी के ऊपर वो भरोसा रखता है, उस पर वो डिपेंड रहता है और किसी बात पर नहीं। प्रभु मेरा भरोसा, मेरी जो निर्भरता है प्रभु पर वैसी प्रतिदिन बढ़ती जाए, ताकि मैं उसके अंदर भरोसा बनाए रखूं, खासकर मैं प्रभु से तोड़े जाने के लिए, सुधारे जाने के लिए भी तैयार रहूं। वो भी एक भरोसे का भाग मेरे जीवन के अंदर चाहिए प्रभु। चाहे तू परिस्थितियों के द्वारा मुझको तोड़ना चाहता है, कठोर लोगों के द्वारा, क्रूर बॉसेस के द्वारा प्रभु यदि तू मुझे तोड़ना चाहता है प्रभु, मैं वहां पर रिटालिएट या रेबेलियन करके उसका सामना करने की कोशिश, प्रभु मैं शांत रहना चाहता हूँ। यशाया में जैसे पढ़ना, शांत रहने में और भरोसा रखने में वे प्रभु हमारी वीरता है, मसीह जीवन की वीरता और बल उसी में है, हम बंद दरवाजों को भी अपना सके, क्योंकि परमेश्वर ही है जो बंद दरवाजों को खोलता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, प्रभु तू मेरे लिए हर दरवाजों को खोलने की ताकत रखता है। अपने समय में प्रभु तेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और तेरे बंद किए हुए दरवाजों को कोई खोल नहीं सकता प्रभु। और हर परिस्थिति में हमने देखा थिस्सलुनीकियों में 5:17 में, हर समय में हम प्रभु को धन्यवाद करते रहे और प्भु सच में हमारी मदद करे कि हम प्रभु में हर समय हम उस भरोसे के, मैं नहीं जानता हर हालातों में किन हालातों से हम सभी गुजर रहे इन हालातों में, लेकिन एक चीज की शायद आज हमें जरूरत है और ये है कि हम प्रभु पर हमेशा उस सदा सर्वदा उस भरोसे को कायम रखें कि जिसने हमें बुलाया है वो सच्चा है और उस कार्य को जरूर पूरा करेगा। और वो यीशु मसीह के समान पिता के अंदर, जैसे वचन में लिखा गया है कि उस वृक्ष के समान जो उस जल के तीर पर लगाया जाता है, जिसके जिसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहते हैं, सूखे वर्ष में भी उसके विषय में चिंता नहीं होती है और वो तब भी हरा भरा और फलता रहेगा। हमारे जीवन के लिए भी प्रभु हमें मदद करे, पवित्र आत्मा की शक्ति दे, जैसे हमने 62 भजन में पढ़ा कि हर समय प्रभु, हर हालात में प्रभु जी हम तुझ पर भरोसा रख सके। प्रभु को स्तुति और महिमा हो।
यस, मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ जो वचन बांटा था उसमें प्रार्थना के बारे में, सचमुच एक उत्तेजन, एक मार्गदर्शन और आगे परमेश्वर के आत्मा का द्वारा प्रार्थना किस प्रकार से करना, ये और एक बार सुनने के लिए मिला है। इन दिनों में जैसा परमेश्वर का वचन पढ़ने के समय में मुझे कुछ वचन मुझे दिया गया है कि भजन संहिता में 92 में 12, 13, 14 साम 92, 12, 13 और 14।
धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे।
इस वचन को जब पढ़ रहा था 12वें वचन में, धर्मी मनुष्य जिस प्रकार से वो खजूर पेड़ के समान बले फूले बोल के लिखा है, और जिस प्रकार से एक धार्मिक व्यक्ति, जैसा मैं नित्य वचन पढ़ने के समय में धार्मिक मनुष्य और दुष्ट के बारे में कई बार लिखा गया था, लेकिन ये इस वचन को पढ़ने के समय में मुझे धार्मिक मनुष्य और खजूर पेड़ के समान एक तुलना करते हैं। और मैं इस खजूर पेड़ के बारे में कुछ मैं देख रहा था और कुछ बाइबल में कुछ मेरे को फुटनोट्स में मिला था कि ये खजूर झाड़ का जो फल जो है और खाने के लिए, सबको खाने के लिए बहुत बहुत उपयोग होता है बोल के, और ये खजूर झाड़ का जो पत्ते रहते हैं वो उस जमाने पर जो टोकरी बनाने के लिए उपयोग होता है, वही पत्ते से और एक ये घर का जो फेंस बनाने के लिए भी उपयोग होता है और एक रस्सी बनाने के लिए भी ये पेड़ का जो पत्ता है उसको उपयोग करते बोल के। और इतना ही नहीं, उस पेड़ को जो बिल्डिंग बनाने के लिए भी जो मटेरियल के समान उपयोग करते, नहीं तो इस पेड़ का जो पेड़ को जैसा आग जलाने के लिए भी इसको उपयोग करते बोल के। और इतना ही नहीं, उसके फल के बारे में लिखा गया कि वो फल को और ऐसा चूस के निकालते उसका स्ट्रॉन्ग अल्कोहल बनाते बोल के। तो इस चीजों को देखने के बाद, पढ़ने के बाद, परमेश्वर के आत्मा जिस प्रकार से जो भजन संहिता लिखने वाला लिखता है, जो धार्मिक व्यक्ति इस खजूर पेड़ के समान बढ़ेगा और फलेगा फूलेगा बोल के लिखा गया है। वो धार्मिक व्यक्ति के बारे में मैं सोचा था बाइबल में, और पहले हम सबको मालूम है नोवा के बारे में। नोवा एक धार्मिक व्यक्ति था और परमेश्वर के नजरों में इसके जीवन में अनुग्रह मिला था, इसलिए जब भी परमेश्वर ने बोला है इस पूरे चीज को मैं, देश को मैं नाश करने वाला है बोल के, और जिस प्रकार से आर्क बनाने के लिए बोला है, और ये एक नोवा ने अपने आप अपने परिवार के साथ है ना पूरे एक सैक्रिफाइस करते हुए परमेश्वर ने दिया हुआ जो कामों को बड़ा किया है। इसलिए आज मैं ये सोचता है कि एक खजूर पेड़ जो है, पूरे पेड़ जो है काम
बन रहा था लेकिन उपयोग हो रहा था, लेकिन मेरे जीवन हमेशा बोलता है एक ही जीवन है वो सही उपयोग करो बोल के, एक ही जीवन मुझे मिला है, एक जीवन को मैं सही प्रभु यीशु आने तक मैं उपयोग करता हूँ क्या। आज नोवा के बारे में जब हम देखते हैं वो सचमुच प्रभु ने जो बताया गया वो कामों को पूरा किया है, इसलिए वो हमें एक उदाहरण पढ़ने के लिए मिला है अपने जीवन में भी। जैसा आगे जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के 18वें में, जैसा सोदम गोमोरा का देश को परमेश्वर ने नाश करने के लिए बोला था कि, और ये बता गया कि अब्राम को, जो अब्राम ने भी प्रार्थना किया यदि प्रभु उस गाँव में कुछ 50 धर्मिक लोग है तो तुम नाश करेगा क्या बोल के, परमेश्वर ने बोला नहीं नाश करेगा बोल के। इसका मतलब धर्मिक मनुष्य का काम जितना जितना इम्पोर्टेंट है बोल के, और जिस प्रकार से हमारा जीवन यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद है बोल के। इसे आगे मैं देखता है अय्यूब के जीवन में भी, अय्यूब का जीवन में भी इतना श्रीमंत व्यक्ति था लेकिन वो एक बार सब कुछ नष्ट होने के बाद भी लेकिन वो क्या किया है, दंडवत करके आराधना किया है, भक्ति किया है। सो आज मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है तो मैं आराधना करूंगा, नहीं तो सब कुछ नुकसान होने के बाद भी मैं आराधना करूंगा क्या। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज ये इससे मुझे सीखने के लिए मिला है। और नया नियम में जब हम पढ़ते हैं पहले अध्याय मत्ती के पहला अध्याय में 19वें वचन, जब योसेफ जिस प्रकार से मरियम के साथ यो शादी के लिए तैयार हो गया है लेकिन गर्भवती हो गया है सब दोनों मिलने के पहले, लेकिन यूसुफ का जीवन में क्या था, एक धार्मिक व्यक्ति था इसलिए अपने पत्नी के बारे में बुरा नहीं बोलना मांगता है बोल के वो चुपचाप छोड़ने के लिए कोशिश किया। यदि उसको अधिकार था लोगों के पास बताने के इस प्रकार से गलती किया है बोल के, लेकिन उसका धार्मिकता कितना अच्छा था। आज अपने मेरे धार्मिकता इस प्रकार से है क्या, नहीं तो लोगों के बारे में बुरा बोलना, ये तमाम चीज है। तो इसलिए ये सारी चीजों को देखने के बाद मैं एक धार्मिक जीवन जीने के लिए आगे बढ़ना चाहता हूँ। जैसे हम मत्ती के सुवर्तमान में 6वें अध्याय में 33 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने कहा था कि सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, प्रथम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को खोजो और सारे चीज तुम्हारे पीछे आएगा बोलकर। तो यीशु मसीह के बारे में जब ये समझते हैं, यीशु मसीह एक सच्चाई एक सैक्रिफाइस जीवन जिया था 33.5 ईयर्स। आज उसको देखते हुए मैं भी प्रभु मुझे अनुग्रह कर सहायता कर आने वाले दिनों में इस सारे वचनों को सुनने के बाद मैं एक धार्मिक जीवन जीते हुए और परमेश्वर को खुशियां होने के लिए। मैं एक दो तीन साल के पहले एक कॉन्फ्रेंस में ब्रदर जोजी सैमुअल ने एक कहानी बताया कि स्टोरी बताया कि ऐसा मुर्गी रहते अंडा देने वाला है और एक बकरी रहती है वो जिस प्रकार से बोल के, मुर्गी रोज तो अंडा देता है और वो उपयोग होता है लेकिन बकरी जो है अपने आप को कुर्बान देता है। तो इस चीजों को सोचने के बाद मुझे लगता है आज अपने जीवन परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोग हो गया है क्या, और आने जो हमारे मेरे घर में और सोसाइटी में जिधर मैं जाता हूँ आता हूँ उनके लिए मेरा जीवन एक बढ़ोतरी है क्या, एक उत्तेजन है क्या। इसको इस धार्मिक जो खजूरी खजूर पेड़ के बारे में पूरे सैक्रिफाइस किया था, सो उस प्रकार से मेरा जीवन में भी पूरा जीवन परमेश्वर के लिए एक सैक्रिफाइस का जीवन जगने के लिए जीने के लिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, आमेन।